आज के मुख्य समाचार। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे एक बंदूकधारी द्वारा गोली लगने के बाद नहीं दिखा रहे हैं कोई महत्वपूर्ण संकेत। बोरिस जॉनसन के ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में पद छोड़ने पर पूरी दुनिया ने व्यक्त की प्रतिक्रिया। और खेल में नोवाक जोकोविच ने जताए विंबलडन फाइनल में निक किरियोस के साथ खेलने की उम्मीद। अब समाचार विस्तार से। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पश्चिमी शहर नारा में चुनाव प्रचार के दौरान गोली मार दी गई है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट कह रही है कि अस्पताल ले जाने पर पूर्व नेता में कोई महत्वपूर्ण लक्षण नहीं दिख रहे थे। फुटेज में दिखाया गया है कि ये 67 वर्षीय एक मंच पर खड़े होकर एक अभियान भाषण दे रहे थे, जब हवा में धुएं के साथ एक जोरदार धमाका सुना गया। फिर उनको सुरक्षा के साथ नीचे जमीन पर ले जाते हुए देखा गया। मुख्य कैबिनेट सचिव हिरोकाजू मात्सुनो ने पत्रकारों से इस घटना के बारे में बात की।
There was a gunshot at 11:30 a.m. The police have arrested one man. Mr. Abe's condition is unknown. At the Prime Minister's office, we have set a crisis management office. Prime Minister Kishida will be returning to the office immediately. Cabinet members nationwide campaigning will be returning to Tokyo. Such violence cannot be permitted, and we oppose it strongly, and we will take every measure possible.
इसके बाद 40 वर्षीय एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। एक साल से अधिक समय से ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले न्यूजीलैंड के लोगों को जल्द ही दोनों देशों के बीच एक नए समझौते के तहत मतदान करने की अनुमति दी जा सकती है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी और न्यूजीलैंड की नेता जसिंडा आर्डन ने स्थायी निवास के लिए और अधिक मार्ग प्रदान करने सहित दोनों देशों के बीच संबंधों में बदलाव पर चर्चा की है। न्यूजीलैंड में रहने वाले ऑस्ट्रेलियाई लोगों के पास पहले से ही मतदान के अधिकार हैं और परिवर्तन के तहत क्रॉस तस्मान पड़ोसियों के बीच एक पारस्परिक समझौता होगा। श्री अल्बनीजी कहते हैं कि राष्ट्रों को नागरिकों के लिए अधिक निर्बाध संक्रमण की दिशा में काम करने की जरूरत है।
We don't want people to be temporary residents forever. And what we'll do is we'll work on ways of a pathway to citizenship with a timeline of Anzac Day 2023. We know that there have been a range of issues raised relating to citizenship, and we think those pathways and working through these issues so that people get more rights that are more consistent.
नेताओं ने पैसिफिक क्षेत्र में चीन की उपस्थिति पर भी चर्चा की। वे अगले सप्ताह पैसिफिक द्वीप फोरम में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। सुश्री आर्डन का कहना है कि पैसिफिक देशों को चीन और पश्चिमी देशों के बीच एक पक्ष चुनने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
It should be the Pacific priorities first and foremost. They should be free of coercion. There should be high quality investment and infrastructure because that is what our region deserves.
सिडनी के उत्तर में हॉक्सबरी नदी के किनारे मध्यम से बड़ी बाढ़ के बाद कई निवासी टूटे और बाढ़ की मिट्टी में डूबे घरों में लौट रहे हैं। हंटर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में बाढ़ का स्तर रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच रहा है। वर्तमान में 60 से अधिक निकासी आदेश अभी भी जारी हैं, जिससे लगभग 40,000 लोग प्रभावित हुए हैं। घर लौटने वालों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। एसईएस ने कहा कि पिछले 24 घंटों में 28 बाढ़ बचाव कार्य हुए हैं। जैसे जैसे सफाई के प्रयास शुरू हुए, आपदा भुगतान को 6 और स्थानीय सरकारी क्षेत्रों के लिए बढ़ा दिया गया है। न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर डोमिनिक पेरोटे कहते हैं कि लगभग 10,000 लोग अभी भी निकासी के आदेश में हैं।
Currently today, we still have 67 evacuation orders in place, 22 evacuation warnings. That's still impacting around 47,000 people across New South Wales. There are a number 75 return with caution to homes, and that's affecting around 50,000 people across New South Wales.
पूरे विक्टोरिया के स्कूलों और अर्ली चाइल्डहुड केंद्रों में अधिक मुफ्त कोविड-19 रैपिड एंटीजन परीक्षण उपलब्ध होंगे। प्रत्येक छात्र और स्टाफ सदस्य को तीसरे और चौथे टर्म के दौरान प्रति सत्र 5 रैपिड एंटीजन टेस्ट के 3 पैक आवंटित किए जाएंगे। ये बच्चों को कोविड सुरक्षित रखने के लिए एंड्रयूज सरकार की $190 मिलियन की योजना का हिस्सा है। चिकित्सकीय रूप से कमजोर बच्चों सहित विशेष सुविधाओं में छात्रों और कर्मचारियों को प्रति सत्र 5 रैट के 6 पैकेट दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री नेटली हचिंस के अनुसार इस कदम से कोविड 19 के प्रसार को सीमित करने और परिवारों के लिए जीवन यापन के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। पैसिफिक के नेता फिजी में होने वाली फोरम की आगामी बैठक में जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया का आह्वान कर रहे हैं। वे कहते हैं कि ये पैसिफिक देशों के सामने सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा है और विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण है। क्लाइमेट काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ऑस्ट्रेलिया से ग्लोबल वार्मिंग को प्राथमिकता देने का आग्रह किया गया है यदि वह पैसिफिक द्वीप देशों के लिए एक प्रमुख सुरक्षा भागीदार बनना चाहता है। एक संयुक्त बयान में पूर्व पैसिफिक नेताओं ने कोयला और गैस के वैश्विक उत्सर्जन को आधा करके फिर समाप्त करने का आह्वान किया है। क्लाइमेट काउंसिल के वरिष्ठ शोधकर्ता डॉक्टर वेजली मॉर्गन कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को इस क्षेत्र की खातिर उनके आह्वान पर ध्यान देना चाहिए।
It really is a fight for survival. And our new report from the Climate Council shows that for the survival of Pacific Island nations, we need to see a global cut in emissions. Emissions needs to be halved this decade. And for a wealthy nation like Australia that has vast untapped renewable energy resources, we should be doing even more than that.
उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी की अधिक महत्वाकांक्षी जलवायु नीति से पैसिफिक देशों के साथ संबंधों में भी मदद मिलनी चाहिए। यूनाइटेड किंगडम में बोरिस जॉनसन के लिए प्रधानमंत्री के रूप में एक उत्तराधिकारी मिलने तक बने रहने के बजाय तुरंत पद छोड़ने के लिए दबाव बढ़ रहा है। श्री जॉनसन बढ़ते आंतरिक दबाव और एक कंजर्वेटिव पार्टी के विद्रोह के आगे झुक गए हैं। ये घोषणा करते हुए कि जब उनके संसदीय सहयोगी एक नया नेता चुन सकते हैं तो ये नौकरी वो छोड़ देंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के राजनीति के प्रोफेसर टिम बेल को नहीं लगता कि श्री जॉनसन कार्यवाहक प्रधानमंत्री के लिए एक स्वाभाविक उम्मीदवार हैं।
As a caretaker, you're really expected to practically say or do nothing, just keep the ship of state afloat. And of course, I think there is actually quite a lot of antipathy, frustration, hostility now within the Conservative Party to Boris Johnson, given what he's put them through. And I suspect some of them will want him gone straight away. And to be honest, I think a lot of the public will want to see him gone straight away. They don't want to see him hanging around like a bad smell in Downing Street.
नेता के रूप में श्री जॉनसन के इस्तीफे ने एक नई दौड़ शुरू कर दी है जिसमें कई उम्मीदवारों को ये कुर्सी मिलने की उम्मीद है। लंदन का प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय 111 मोरियारी स्केलेटल और 2 माओरी पुश्तैनी अवशेष न्यूजीलैंड को लौटाने के लिए तैयार है। मोरियारी चैथम द्वीप समूह के मूल निवासी थे जो न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप से 800 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। उनकी वापसी मोरियारी पैतृक अवशेषों का अब तक का सबसे बड़ा प्रत्यावर्तन है और न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय संग्रहालय ते पापा को दिया जाना है। ये 15 साल की बातचीत और शोध को पूर्ण करता है। अब खबरें भारत से। भारत में पिछले 24 घंटों में 18,815 नए कोविड 19 के मामले सामने आए हैं। इस अवधि में कोविड 19 से 38 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अब जानेंगे डॉलर का हाल। मुद्रा दर की जानकारी में इस रिपोर्ट के आ जाने तक अमेरिका में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत आज 68 सेंट्स है और भारत में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 54.17 रुपये हो गई है। अब समाचार खेल जगत से। खेल में राफेल नडाल को अपने सेमीफाइनल मुकाबले से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस वजह से निक किरियोस विंबलडन के फाइनल में पहुंच गए हैं। इस स्पेनिश खिलाड़ी को पेट में दर्दनाक चोट लगी थी जिस वजह से उनका परिवार उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होने का आग्रह कर रहा था। नडाल कहते हैं कि ये निर्णय लेना उनके लिए मुश्किल था।
I made my decision because I believe that I can't win too matches. under these circumstances. You know, I can't surf. It's not only that I can't surf at the right speed. It's that I can't do the normal movement to surf.
निक किरियोस ने नडाल को शुभकामनाएं देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है, जबकि वे अलग अलग व्यक्तित्व वाले अलग अलग खिलाड़ी हैं। उन्हें आशा है कि नडाल जल्द ही स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाएंगे। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। पर्थ में कल बारिश हो सकती है और वहां का न्यूनतम तापमान 13 और अधिकतम तापमान 21 डिग्री तक रहेगा। एडिलेड में भी बारिश की संभावना है और वहां का न्यूनतम तापमान 8 और अधिकतम तापमान 15 डिग्री रहेगा। मेलबर्न में दिन ढलने के साथ बारिश कम होगी और वहां का न्यूनतम तापमान 8 और अधिकतम तापमान 13 डिग्री रहेगा। कैनबेरा में आंशिक बादल रहेंगे और वहां का न्यूनतम तापमान -1 और अधिकतम तापमान 12 डिग्री रहेगा। सिडनी में ज्यादातर धूप रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान 8 और अधिकतम तापमान 17 डिग्री रहेगा। ब्रिस्बेन में दिन भर धूप खिली रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान 7 और अधिकतम तापमान 19 डिग्री तक रहेगा। डार्विन में भी धूप खिली रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान रहेगा 17 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री। और वहां भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल बारिश हो सकती है और वहां का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक रहेगा। मौसम की जानकारी के साथ आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। धन्यवाद।